نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے کسی بھی سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے نام کا آ جانا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کام کی برکت اللہ کے نام سے اور اللہ کا نام شروع میں بسم اللہ کے طور پہ پڑھنا کوئی رسم نہیں ہے سنت تو ہے حکم بھی ہے لیکن اصل میں ایک بندہ مومن کے دل کی کہانی ہے ہر چیز میں چونکہ اللہ کا نام ہوتا ہے تو پھر جب اللہ کا ذکر ہو اللہ کا کلام ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو تو جب بھی بسم اللہ پڑھیں بڑے شعور سے پڑھیں کیونکہ آج اگر سورت کے شروع میں آپ نے پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ نے بہت دن کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی اور ایسی چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے کیونکہ جب کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر ہم بعض دفعہ اس کی اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے بہرحال سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات سے سورت بقرہ کے آغاز میں بھی بات ہوئی تھی کہ مکی سورتوں کے آغاز میں کچھ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ توڑ کے پڑھنے کا حکم دیا اکٹھا نہیں پڑھتے تھے اور ان صورتوں میں سورت البقرہ کے بعد اب سورت آل عمران بھی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور اس کی کیا خاص وجہ ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صورتوں کے شروع میں الف لام میم اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں کون کون سی صورتیں چھ صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں سورت البقرہ سورت آل عمران سورت عنکبوت سورت روم لقمان اور الف لام میم سجدہ ان کے مقاصد وہی تھے جو سورت البقرہ میں ہم نے دیکھے کہ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا مان تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس کرنے کے لیے بتا دیا کہ آؤ اس کتاب کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ کہ جس کتاب کو تم جان ہی نہیں سکتے اور جیسا کہ سورت کے انٹروڈکشن میں ہم یہ بات کر چکے کہ اس سورت کی پہلی 32 آیتیں 1 سے 32 غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئیں 33 سے 64 آیتیں سن 9 ہجری میں وفد نجران کے سامنے نازل ہوئیں آیت نمبر 65 سے 99 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی اور 100 سے پلس آیتیں اوپر جو ہیں وہ غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئیں بار بار ان صورتوں کے اندر ان باتوں کا آ جانا ہم سب کو اس بات کا بھی یقین دلاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا کوئی عرب تو عرب عجم تو عجم کوئی انسان مقابلہ کر نہ سکا الف لام میم کے بعد جو اگلی بات شروع ہوتی ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کے 5 آیتیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کی 6 آیتیں ان کا موضوع ہے اللہ کا تعارف چونکہ خاص ماحول میں نازل ہو رہی تھی یہ سورت تو لہٰذا وہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ہے الہ نہیں کوئی مگر وہی اور وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے بالکل یہی انداز آپ کو آیت الکرسی کے شروع میں دکھا اور یہی انداز آپ کو سورۃ طہٰ میں بھی دکھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک میں اسم اعظم ان 3 آیتوں میں ہے آپ دیکھیے قرآن کا ایک مزاج سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزوں کو بہت ایمفیسائز تو کیا گیا لیکن اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں بتا دیا گیا کہ بس یہ ہے یہ ہے مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر یہ کہہ دیا کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں ڈھونڈو 5 راتوں میں سے کوئی ایک آیت رات ہوگی جس کے اندر یہ رات ہوگی تاکہ کچھ کوشش تم بھی تو کرو نا استادوں کو بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہر بات نہیں بتا دینی چاہیے اور اسٹوڈینٹس بس سنتے سنتے سو ہی جائیں بلکہ ان کو اپنے دماغ کو بھی تھوڑا سا حرکت میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہاں کہا کہ ڈھونڈو اور اسی طرح سے اسم اعظم کی بہت فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو اگر ہم ان تینوں آیتوں, سورت آل عمران کی پہلی آیت, آیت الکرسی اور سورت الطحیٰ کی آیتوں کو دیکھیے, تو تینوں میں جو لفظ مشترک ہے نا, وہ الحی القیوم ہے. اس لیے بہت سارے علماء کرام کا یہ خیال ہے, یقینی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے, جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں رات لیلت القدر ہوتی ہے, تو اسی طرح بہت ساروں کا خیال ہے کہ الحی اور القیوم میں اسم اعظم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بہت بڑی مشکل میں آتے, معاملے جب تنگ ہوتے, تو آپ پڑھا کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے زندہ اور اے تھامنے والے, میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. سورۃ طٰہٰ کی آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے, 111 111 ہے. تو گویا کہ ایک بندے کو رب کے آگے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کو اپنا مانا جائے. ہم سب کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ سمجھے. یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ سمجھو, بلکہ اللہ کو سب کچھ سمجھو. بہت سارے لوگ اللہ کو کچھ سمجھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا, حالانکہ اللہ کو جب تک سب کچھ نہیں سمجھیں گے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس الحی اور القیوم کا کارنامہ دیکھو. اب دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کے رب ہونے کے, گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ عبودیت کے جذبے اللہ میں ڈھونڈو. دیکھیے, اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ شرک کیا ہے, تو شرک کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عبودیت کے جذبوں کو کسی اور میں ڈھونڈنا, اللہ کے آگے جھکنے, اس کی ذات میں کھونے, اس سے مانگنے کی بجائے کسی اور سے مانگنا, کسی اور سے اس کی امیدیں رکھ دینا. تو فرمایا کیا, دیکھو اس کا کارنامہ کیا ہے, نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا الحی اور القیوم کا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے کتاب نازل کی جو بالکل حق کے ساتھ نازل کی ہے. اس میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو کہ یہ کلام کس کا ہے, کس نے اتارا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے رائٹر اپنے وقت کے بہترین رائٹر ہوتے ہیں, لیکن آنے والے دور میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. شیکسپیئر کی لکھی ہوئی باتیں آج کوئی نہیں پڑھے گا. بڑے بڑے انگلش اور اردو کے بڑے بڑے لکھاری آئے اور چلے گئے, آج ان کی زبانیں ختم, کیونکہ اس دور کے تقاضے پورے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ چونکہ الحی اور القیوم ہے, اس لیے پھر اس کا کلام بھی زندہ ہے اور تھامنے والا. قرآن زندہ کیسے, 1400 سال, بلکہ 1434 سال ہو گئے اب تو, آج بھی زندہ لگتا ہے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے, اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہذا کتاب ینطق بالحق, یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. ہر بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ہی کتاب ہے. سینکڑوں کے اعتبار سے ہمیں شیئرنگز آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, جس میں یہ مضمون کامن ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو لگتا ہے میرے لیے, آج جو سوچ کے آئی تھی اس کا جواب مجھے مل گیا. مشرق, مغرب, ایسٹ, ویسٹ, ناروے, اوسلو, ہیوسٹن, جہاں جہاں بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ گواہیاں موجود ہیں کہ جو سوچ کے آتے ہیں وہ سب کلاس کے اندر آ جاتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ ہماری باتیں؟ تو میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے, کسی کو بھی نہیں چلتا. آپ میری بات چھوڑیں, آپ پچھلے سال کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے, اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہوگی. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور القیوم کیسے ہے کتاب؟ سورۃ کہف میں آپ کتاب کی ایک خوبی پڑھیں گے, قیم لینذر, قیم ہے یہ کتاب, یعنی یہ کتاب تھام لیتی ہے. اگر آج کل آپ اپنی زندگی میں کسی حادثے سے گزر رہے ہیں, اگر آج کل آپ ٹوٹے ہوئے ہیں, آج کل اگر کسی نے آپ کو جھٹلایا ہوا, اگر کسی نے آپ کو ٹھکرایا ہوا, کوئی اولاد کا, کوئی مال کا, کوئی شوہر کا, کوئی دنیا کا غم ہے, تو سب سے بڑا یہ سہارا آپ کے لیے کتاب ہے, اس کو تھام لیں. دیکھیے, اس کو قیوم کے ناطے سے ایک الگ ہی بات بتا رہی ہوں, اس کو آپ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کو آپ اپنے خوشی کے دنوں میں تھام لیں, اپنی خوشیوں میں اس کتاب کو تھام لیں, آپ کے غم کے دنوں میں یہ کتاب آپ کو تھام لے گی. آپ اس کتاب کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف, یعنی روٹین لائف میں پکڑ لیجئے, پھر جب کبھی انسان ہونے کے ناطے اور فطرت کا اصول ہونے کے ناطے ہمیں کوئی غم آئے گا نا, تو یہ کتاب آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی. واللہ اس کتاب سے بیسٹ فرینڈ کوئی ہے ہی نہیں. ماں باپ, بھائی, شوہر, بچے, مال, دولت, دوست, عزیز, خاندان, برادری, سب چھوڑ جائیں, یہ کتاب آپ کو تھام لے گی, کیونکہ یہ الحی القیوم کی نازل کردہ. اور کیا خوبی ہے اس کتاب کی, مصدق لما بین یدی, یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. مراد تورات اور انجیل کی باتوں کو ویریفائی کرتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے, اس کتاب کو مہیمنن کہا گیا, سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تورات اور انجیل کی ٹھیک باتوں کو یہ کتاب ویریفائی کر دیتی ہے. آج چینجز ہو گئیں, ابھی بات ہوگی, آگے آپ دیکھیں گے خود بخود, لیکن قرآن پاک نے ان دونوں کتابوں کی اصل کاپی کو سیو کر لیا. ہم اس کو اپنی ایڈیٹنگ کی زبان میں سمجھتے ہیں, جیسے آپ دیکھیے کہ ڈیلی ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, تو ہم اس کے بعد اس کو سیو کر لیتے ہیں. پھر یہ ایڈیٹنگ جو ہے ہماری ہر اس بندے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے جو ایڈیٹنگ پہ کام کرتا ہے. اب ایک اوریجنل کاپی ہمارے اس کمپیوٹر میں جہاں ہم اس کو سیو کرتے ہیں, بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ اس کی کاپیز کھل جاتی ہیں. اب ایک ایڈٹ کرنے والی سسٹر جب وہ ایڈٹ کرتی ہیں اپنی فائل کو, وہ کاٹیں پھاٹیں جو مرضی کریں, اس کے اندر سے کچھ نکال دیں, کچھ ڈال دیں, کبھی اس کی آواز کم کر دیں, زیادہ کر دیں, وہ کر سکتی ہیں. سم ٹائم جب وہ ایڈٹ ہو کے ہمارے پاس آتی ہے اور وہ سیو کر دیں گی جب, تب وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی. جب وہ فائل ہمارے پاس آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں, ارے کہتے ہیں شاید یہ کہ نئی سسٹر تھی, انہوں نے تو بہت ہی کاٹ دیا, جملے ٹوٹ گئے, کہیں غلطیاں چھوڑ دیں, اب کیا کریں گے ہم. پھر ہم کہتے ہیں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں, دیکھو اوریجنل کاپی سیو ہے نا, وہ ہوتی ہے, ہم دوبارہ اس کو کھول کے کسی اور سے سیو کرا لیتے ہیں. اتنی بات واضح ہے. تورات اور انجیل پہ آج بات ہونے والی ہے, اس لیے آپ کا مائنڈ بنا رہی ہوں. تورات اور انجیل اپنے وقت کی کتابیں تھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا, بالکل نیچرل اوریجنل فارم تھی ان کی. جب کوئی کتاب اپنی اوریجنل فارم میں ہوتی ہے تو وہ بالکل درست ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ اس کتاب میں سے کچھ ایڈٹ کر دیتے ہیں, کچھ ڈال دیتے ہیں, ہم دو طرح سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں, مثلا جیسے ٹنگ سلپس نکال دیں, کفنگ نکال دیں, کوئی پیچھے سے آپ لوگوں کی آواز ہے تو وہ نکل گئی, کہیں کھانسی کی آواز, نزلے کی آواز, کچھ بھی وہ نکلتی ہیں. پھر اسی طرح دوسری ایڈیٹنگ ہوتی ہے, ہم اس میں کچھ ڈالتے ہیں, جہاں تلاوت سنائی جاتی ہے وہ اس فائل میں ڈال دیتے ہیں, اور اسی طرح کی باقی چیزیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بالکل ایک سیدھی سی فائل ہو کے چلنے لگ جاتی ہے. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ جو لوگ بعد میں سنیں ان کا ٹائم سیو ہو, ان کو کم وقت میں پوری صحیح چیز مل جائے اور غلطی دہرائی نہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی اپنی کتاب نازل کرتا ہے نا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو بالکل وقت اور زمانے اور حالات کے مطابق سیو کر کے بھیجتا ہے. اور قرآن ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول تین لفظوں میں یاد رکھ لیں. جن کو کمپیوٹرز چلانے آتے ہیں, کھولنے آتے ہیں, وہ میرے ان تین لفظوں کو سنتے ہی بالکل سمجھ جائیں گے. PDF, کوئی ہے جس کو سمجھ نہیں آیا؟ PDF کاپی کیا ہوتی ہے عام طور پہ, اب تو اس کی بھی چینجنگ کے نکل آئے نا اگلے سلسلے, لیکن عموماً کمپیوٹرز کی لینگویج میں جب کوئی چیز آپ کو PDF فارمیٹ میں ملتی ہے نا, تو کھولنے والا اس کو چینج نہیں کر سکتا. آپ کو بھی ہم پیپر بھیجیں, اگر آن لائن پہ ہم بھیجتے ہیں, اپنی سارے ڈاکیومنٹ PDF ہوتے ہیں. اگر ہم آپ کو ورڈ میں بھیج دیں, آپ کھول کے چینج کر لیں گے. اگر ہم آپ کو پاور پوائنٹ میں بھیج دیں, آپ چینج کر لیں گے. لیکن کچھ فارمز ہوتے ہیں, JPG بھی ایک فارمیٹ ہے, وہ ہم لوگوں سے چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے جب کوئی کتاب اترتی ہے تو وہ ان چینجیبل ورژن میں اترتی ہے, ٹھیک ہے. ہوا کیا, قرآن سے پہلے دو کتابیں اتری, یہ پوری ہسٹری ہے اس وقت اب تورات اور انجیل کی, اس لیے اس پہ ذرا سی زیادہ توجہ آپ کو دینی پڑے گی. قرآن سے پہلے دو کتابیں اتری, ایک تورات اور ایک انجیل. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کتابوں کو ایز اٹ از اس کو لیتے اور بس کام شروع کر دیتے, یہی درست طریقہ ہوتا ہے. लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने मेंटल बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट दिया होता है, नतीजा क्या होता है कि उसके बाद फिर वो उस किताब के अंदर चेंजेस करते हैं। यहूद के उलमा बड़े समझदार थे। इसको मैं बिल्कुल इसी तरह ही लूँगी कि जैसे कि आम लोग मेरे आप जैसे पीडीएफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो कंप्यूटर मास्टर्स होते हैं ना, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो पीडीएफ को भी खोल सकते हैं, उस पर चेंज कर लें, कुछ भी कर लें। इनके उलमा ने उन किताबों को चेंज करना शुरू कर दिया। अब जब चेंज किया, एक कापी ख़राब की, दूसरी ख़राब की, और इतनी कसरत में किताबें छपती कोई नहीं थी उस दौर में, आप ये कह लें। नतीजा क्या हुआ कि असली कॉपी के मुकाबले में नकली कॉपियां आम हो गई। आप इसको एक नोट की एग्जांपल से समझें। गवर्नमेंट एक करेंसी इशू करती है, नया नोट, सब जगह गया, बिल्कुल ठीक है। किसी जगह कोई मन चला ऐसा है कि उसने उसकी कॉपियां बनानी शुरू कर दी। एक आधा बंदा होता है तो पकड़ा जाता है, उसकी वो कॉपी पकड़ के आपने ज़ाया कर दी, उसको जेल में डाल दिया, बात समझ आ गई। एक बहुत बड़ा माफिया हो, हजारों की तादाद में नकली नोट आम कर दे, तो आप बताइए कि अकलमंद हुकूमत क्या करेगी? अब वो सारे नोट इकट्ठे नहीं करेगी, वो कहती तुम रखो अपने पास, जो उनका अपना असली नोट था ना उसको बैन कर देगी कि बस भाई आज के बाद ये 5 का नोट खत्म, 10 दिन है, 8 दिन है, जिसके पास जो भी नोट है असली लाए दे दो, हम चेंज कर देंगे, और उसके बाद जब कोई नोट दिखेगा तो हम नहीं मानेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब जब वो पिछला नोट हो गया बैन, अब आ गया उसकी जगह नया नोट, और लिख दिया जाता है कि ये पुराना नोट अब वैलिड नहीं है। अब अगर साल 6 महीने बाद किसी की कॉपी किताब में रखा हुआ या कहीं शौहर से छुपाया हुआ गद्दे के नीचे से 5 का नोट निकल आया और वो ले आए बैंक के पास कि ये मुझे दे दीजिए, तो वो क्या कहेंगे कि सॉरी इट्स नॉट वैलिड एनी मोर। ठीक है, बस इसको समझें। जब लोगों ने अल्लाह के दीन में मिलावट शुरू की, उसकी नकली जाली कॉपियां बनाई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उस पिछली किताब को बैन कर दिया और कहा कि वानजल अल फुरकान। अब इन तीन लफ्जों को आप समझेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं वह अनजल तौरात तवल इंजील, और उसने उतारी थी तौरात और इंजील, मिन कबल हुदल लिन्नास, ये पहले लोगों के लिए हिदायत का जरिया थी, पहले किससे पहले, अनजल अल फुरकान से पहले। ठीक है, उतर गई, खत्म हो गई, अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इसलिए आप इसको छोड़ दो। और जिन लोगों ने ये चेंजेस की अल्लाह की किताबों में, तो इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाही लहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया, इनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिकाम, अल्लाह ताला जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। बात क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गई। कितने सवाल हैं लोगों के दिमागों में, तौरात क्या थी, इंजील क्या है, वो क्या है, वैसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई। तो आइए जरा थोड़ी सी बात हम तौरात और इंजील पे करते हैं। आपको मकसद नज़ूल तो समझ आ गया कि तौरात अपने वक्त में और इंजील अपने वक्त में बिल्कुल वैलिड थी, मिन इंदिल्लाह थी, अल्लाह ने दी, लोगों को दी, पढ़ो लिखो सुनो। लेकिन जब लोगों ने उसमें मिलावट शुरू कर दी, पीछे हम पढ़ चुके 2 दफ़ा पहले ही पारे में, वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, ओलमा यहूद तुम किताब में इधर की बातें उधर मिला लेते हो और कुछ बातें छुपा लेते हो और तुम जानते हो, अल्लाह ने उसको वैलिड ही नहीं किया, खत्म हो गई बात। अब आज के दौर में लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा जी ये कौन सी बड़ी बात है, इसको कितनी ज़रूरत है, और ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप देखिए कि जब कभी भी इस तरह का मामला आता है कि पिछली चीज़ को ख़त्म करके अगली चीज़ ले आई जाए, तो गवर्नमेंट क्या पिछली चीज़ को एक्सेप्ट करती है? मिसाल है कि आप अमेरिका में जाते हैं, पहले उनका जो पासपोर्ट है उसका कलर कोई और था, कोई पुरानी चीज़ थी, को आज से 20 साल 25 साल पहले की, अब वो किसी म्यूजियम में तो रख देंगे, लेकिन आप एयरपोर्ट पे जाके वो चीज़ पेश करके उसकी जगह पे निकलना चाहेंगे, बाहर तो नहीं जाने देंगे ना। तो कल तक तौरात और इंजील अपनी जगह पे बड़ी खूबसूरत किताबें थी, आज वैलिड नहीं रही, सीधी सी बात है। एक मतरूका नोट जब नहीं चलता किसी स्कूल में, किसी दुनिया के कारखाने में, किसी मॉल में, तो अल्लाह की उतारी हुई किताब क्यों बदले? ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही बात बता के हम सबको इस बात की खबर दे दी कि पहले उतरी थी अब नहीं उतरी। अच्छा जी, तौरात लफ्ज़ को देखते हैं, ये कहाँ से है, क्या रूट होगा तौरात का। अब हम सूरत आल इमरान से रूट वर्ड्स और वज़ाहत तफसीर के अंदर किया करेंगे, क्योंकि अब कोई कोई लफ्ज़ बीच में आया करेंगे ना, तो हम उसको रेपिटिशन से बचाना चाहते हैं। व र या वुरिया, वुरिया कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये लफ्ज़ भी कुरान में आएगा, पत्थर को दूसरे पर रगड़ना, फ्रिक्शन के मानों में। तौरात का लफ्ज़ वौरा या से है, कहते हैं पत्थर को दूसरे पर रगड़ना, फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन होती है तो क्या होता है, रोशनी पैदा होती है। दो पत्थरों को जब आप एक दूसरे से जोड़ते हैं ना, देखिए इस वक्त आप लोग लिखा करें, आप लोग कुछ और देखते हैं या लिखते नहीं है ना, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ कि शायद मैं गलत बता रही हूँ। जो बोला जाता है ना, जितना बस तौफीक के लिख सकें, यानी आप में से कुछ ऐसे साथी मुझे पता नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप इस वक्त किसी और बुक में ढूंढें कि कहीं इसका कुछ और लिखा हुआ है तो हम वहाँ से देखेंगे, तो ये मुझे तकलीफ होती है। इससे बस समझेंगे जैसे नमाज में इमाम के, बल्कि ये बात इसलाह के लिए कर दूँ, कभी कभी मुझे आवाज़ आती है। आपको पता है कि जब नमाज में इमाम ऊंची आवाज़ पढ़ते हैं ना जमात, तो पीछे आपको सूरह फातिहा तो पढ़नी होती है, लेकिन उसके साथ जो सूरत होती है वो नहीं पढ़नी होती। बाद सफ़ा मैंने मगरिब की नमाज़ कहीं पढ़ाते हुए सुना है कि जो साथ वाले होते हैं ना, वो भी पीछे पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि वो सूरत पढ़ूँ जो किसी को ना आती हो, चाहे वो कोई छोटी सी आयती हो। ठीक है, तो नहीं पढ़ते। अब ये कलाक इशू था, इससे जहन से निकाल दें, वापस आ दें तौरात पे। व र या, ठीक है, पत्थर को पत्थर पे रगड़ना, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से रोशनी होती है, तो तौरात का मतलब था रोशनी। कानून के मानों में भी ये लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल होता था, लॉ, बुक ऑफ लॉ थी। इंजील का लफ्ज़ नून जीम लाम नजल, चौड़ा और वसी के मानों में अरबी में, खुशखबरी के मानों में, यानी तौरात अहकामात का मजमुआ थी, वेरी सॉलिड लॉ बुक। अगर आप में से किसी ने लॉ पढ़ा हो तो उसको पता होगा कितनी बोरिंग बुक्स होती हैं, जहीम किस्म की मोटी थिक किताबें, इसलिए यहूद में सख्ती आती है। और इंजील खुशखबरियां, ग्लैड टाइडिंग, लव 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 की बात होती थी। ठीक है, तौरात जब नाजिल हुई थी तो इसकी 12 कॉपियां करवाई गई और 12 कबीलों को दे दी गई, पीछे से आप पढ़ चुके हैं इसने अशरों, ठीक है, हर कबीले को दे दी। फिर क्या हुआ, हर कबीले के पास उसकी कॉपी चली गई। 586 कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले, बुख्त नसर नाम के एक बादशाह ने यहूद पे हमला किया, पीछे हम सुन चुके हैं पहले पारे में दुरीबत अलैहिम अज़िल्ला में, वही बात इधर दोहराई जा रही है। बुख्त नसर नाम का एक काफिर बादशाह था, उसने उस दौर के मुसलमान यानी यहूद पे हमला किया, हैकले सुलेमानी को तबाह कर दिया, तो रात उसके अंदर ही दब गई और लोगों को गुलाम बना के चला गया, बाबुल में ले गया। कहाँ पड़ी थी बात, याद आ रही है कुछ, हारूत अबा मारूत जी, शाबाश, वही वाक्य इधर ही कि ये बेबिलियंस के हाथों में गुलाम बन गए और वक्त के साथ साथ इनके हाथों से सब कुछ चला गया। फिर वो हजरत उजैर वाला किस्सा याद करें, वो गुजरे और तौरात आई, तो लिहाजा जो असल तौरात थी वो खत्म और हजरत उजैर के हाफ़से से किताब निकली, तो गोया कि आप कह सकते हैं कि आज की जो तौरात है, अब वो तौरात तो खत्म, किसी को इतना तक नहीं पता कि वो तौरात किस जुबान में नासिल हुई थी। ये मजे की बात है, क्योंकि अब ट्रांसलेशंस मौजूद है ना, हिब्रू में कर ली, किसी में कर ली। आज की जो तौरात है ना, ये 3 चीजों का मजमू है। नंबर एक, तारीख़ बनी इसराइल कुरान में आती है, मेरा ख्याल है मुसलमानों की भी सीरत से ज़्यादा आती है, तरतीब से भी आती है, सूरह कसस में हम हज़रत मूसा की तरतीब पढ़ेंगे, सूरह दोहा में आती है और इसी तरह और बहुत सारी सूरतों में। ठीक है, तो बनी इसराइल की तारीख है। दूसरा, इसमें जो हिस्सा है ये मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत का है, जैसे नबी की सीरत। तीसरा, चंद सही आयात भी मौजूद हैं। आज भी तौरात नाम की जो बाइबल का जो मजमू है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें कुछ हिस्सा अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। देखिए, अगर कुछ भी ना रखेंगे तो उसको तौरात कैसे कहेंगे, याद है ना, असल चीज में ही कुछ मिलाते हैं ना। मिसाल है कि अगर कोई काली मिर्चों में समझें कि कोयला मिलाता है, तो खाली कोयला तो नहीं लोगों को खिलाएगा, कुछ तो काली मिर्चें होंगी ना। बिल्कुल यही बात है, असल भी होता है लेकिन इतना थोड़ा, लेकिन जाहिर है कि आम लोगों के पास कोई क्राइटेरियन नहीं है उसको परखने का, इसलिए उससे फ़ायदा नहीं उठा पाता। चौथी चीज़ जो तौरात के अंदर मौजूद है वो है तहरीफ शुदा आयात, चेंज्ड वर्सेस, जो उनके उलमा ने, मुफ्तियों ने अपने फतवों से ख़त्म कर दी। ठीक है, तो आप बताइए, तारीख़ बनी इसराइल की हमें ज़रूरत है कुरान में मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा की ज़िंदगी की कहानी कुरान में मिल जाती है, मिल जाती है। और रह गई वो आयतें जो अल्लाह की तरफ से थी, वो कहाँ से मिले, वो भी कुरान में। आपको सूरत मायदा पढ़ते हुए लिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत सारी तौरात और इंजील की आयतें जो आज भी वैलिड हैं, वो कुरान में अल्लाह ने सेव कर दी। मुहैमन हिफाजत करती है ये किताब उन पिछली किताबों की। तो बाकी रह गई पीछे उनकी चेंज की आयतें, क्या हम उनको लेना चाहते हैं, कोई मिलावट वाली चाहते हैं? तो किसको ज़रूरत है फिर तौरात पढ़ने की आज? हज़रत उमर के हाथ में अल्लाह के नबी ने जब एक कागज़ तौरात का देखा तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा कि उमर, अगर वो मूसा जिन पर ये किताब नाजिल हुई थी, अगर वो भी आज आ जाएं तो तुम उनके पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो लिहाजा पता क्या चला कि हमें इस वक्त तौरात की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपने वक्त में थी। और तौरात पे बहुत ज़्यादा बात सूरत मायदा में भी होगी इंशाल्लाह, डिटेल से होगी। आगे चलते हैं इंजील पे। आज की इंजील क्या है? पहली बात तो लिख लीजिए कि इंजील नाम की कोई किताब ईसा पे नहीं उतरी। बड़ी दिलचस्प बात है ये, बहुत पहली दफ़ा सबको बड़ी हैरत होती है। आज तक हम यही सोचते आए ना कि एक किताब उतरी होगी ईसा अलैहि सलाम पे और उसके ऊपर बाहर मोटा सा टाइटल होगा इंजील का और नाजिल हुई। ईसा पे नहीं उतरी किताब। इंजील क्या है? हज़रत ईसा अलैहि सलाम की इस ज़मीन से उठाए जाने के जो आखिरी तकरीबन 2.5 से 3 साल थे, उनके हालात हैं। यानी ईसा अलैहि सलाम की ज़िंदगी के लास्ट अबाउट 3 ईयर्स जो थे वो उसमें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ सीरत है, हज़रत ईसा की कहानी, पैदा होने की, उनके माँ बाप की बातें। तीसरी चीज़ अकवाले ईसा, हज़रत ईसा के कॉल हैं उसमें। अभी मैं आपको टैली करके हदीस से बताऊंगी तो आपको बात और क्लियर होगी इंशाल्लाह। कुछ हिस्सा उसमें अल्लाह का कलाम है जो ईसा पे वही के ज़रिए उतरता था। और पांचवी चीज़ उसमें लोगों की मनमानी बातें, तहरीफ, किसने लिखी, किसने जमा की, किसने तब्दीलियां की, किसी को नहीं पता। आज भी इंजील के नाम पे 4 अनाजील मिलती हैं बाजार में, मत्ती, लौका, यूहन्ना और मुरक्कस। ये हजरत ईसा के हवारियों के नाम थे, बाद में लोगों ने पाइल अप की और लिख दी। किसी की कोई हिस्ट्री नहीं है। एक इंजील ऐसी है जिसको इंजीले बरनबास कहते हैं, यानी बरनबास नाम का एक आपका सहवारी जो बिल्कुल आपके अर्ली दौर का था, उसने जब हज़रत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के बाद एक किताब पाइल अप की, वो बिल्कुल ठीक थी। और इत्तफाक देखिए कि मुझे उसका उर्दू तर्जमा पढ़ने का मौका मिला। वो बहन है इस वक्त, किसी के पास देखें तो ले लेते हैं। पूरी दुनिया में उसकी इशाअत पे पाबंदी या जारादारी है लोगों की, क्योंकि वो इंजील और आप कुरान खोल के देखें तो आपको एक लगता है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं हुई हुई। जो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया था, उसके बाद जो उनके 12 सहाबी थे जिन्होंने कहा था क्या फ़िक्र ना करें कि नाहनु अंसारुल्लाह, उनमें से जो करीबी साथी थे उन्होंने कहा कि हमारा लीडर तो अब आसमान पे उठा लिया गया तो इस पैगाम को कैसे सेव करें, उन्होंने उनकी सारी बातें जमा करके लिख ली। और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो प्योर थी। बाद में ये जो दूसरे हैं, यूहन्ना है, लुका है, मत्ती है, ये कई सौ सौ साल बाद लिखी गई किताबें, इसमें चेंजेस हो गई। ठीक है, वो खुद मानते हैं, आज क्रिश्चियंस खुद मानते हैं कि आज हमारी इंजील के जो अल्फाज हैं ये खुदाई अल्फाज नहीं है। कुरान के लिए तो हम कहते हैं ना, कुरान बोलता है बल हुआ कलाम अल्लाह। देखिए, एक तरफ कुरान है 1400 साल से नहीं बदला, इसकी ज़ुबान, ज़बर, ज़ेर, पेश, वाहिद, जमा, तस्निया सब सेव है। और एक तरफ देखिए कि ये पुरानी किताबें नहीं मिलती। वो कहते हैं ये डिवाइन इंस्पिरेशंस हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ इंस्पिरेशंस मिली जो लोगों ने मिलके लिख ली अपने लफ्ज़ों में, लिहाजा उसको छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि इन किताबों के सोर्स की आज हमारे लिए क्या अहमियत है? अभी आपका जहन इतना नहीं खुलेगा, मैं मानती हूँ, और सॉरी फॉर दिस के बहुत सख्त बातें हैं, यानी बहुत ज़रा बड़ी बातें हैं, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए कि अगर आप तौरात और इंजील उसका कंपैरिजन कुरान से करें, नो कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो 100% बात सच है। आप तौरात और इंजील का कंपैरिजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कर लें, हदीस का मज़मून चूँकि आपको भी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इस पे खुद ही बता रही हूँ कि आपको हो सकता है ये बात ना समझ आए। अगर आप इन किताबों का तौरात और इंजील से भी कंपैरिजन करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ईफ़ हदीसें, यानी जो हदीस की कैटेगरी में सबसे नीचे है, वो क्या होती है इस वक्त नहीं बता सकती। बस ये जहन में रखे कि ज़ईफ़ हदीस की भी चेन पीछे से पता चलती है, किसने उसने, यानी मिसाल है कि रिजवाना ने नौरीन से कहा, नौरीन ने आगे मायदा से कहा, मायदा ने आगे उनसे कहा और आगे इशरत से कहा, तो अब उनसे इशरत की मुलाकात नहीं साबित हो रही, मिसाल दे रही हूँ। सिर्फ एक बंदा बीच में नहीं होता जिसकी वजह से उसको चेन को ज़ईफ़ कह दिया जाता है, कोई एक रावी है उसकी बात नहीं मिल रही, उनकी मुलाकात नहीं मिल रही। ये एक बड़ी दिलचस्प साइंस है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह के नबी की हदीसों तक हमें पता है कब हुई, किसने कही, किधर हुई, लेकिन तौरात इंजील का तो सोर्स तक नहीं पता। आप पता है कि 4 लाख के करीब आम इंसान जो नबी नहीं थे, ताबे नहीं थे, वली नहीं, उनके हालाते जिंदगी जमा किए गए हैं। अस्मा और रिजाल एक पूरा सब्जेक्ट है हदीस का, किसने कही, कौन था ये, आमश कौन था ये, उतबा कौन था ये, कौन था इसका बाप, कौन था किधर किधर। आप पढ़ के देखें, ये सारे गम भूल जाएंगे कि बच्चों की फीसें और घर का खर्चा और शादी में क्या और वो, ये जो गम अपने दिमाग को ना कि मेरे दांत के अंदर के नीचे के हिस्से में दर्द होने वाला, चलो डॉक्टर पे चलते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप है, वो ये बस, वो मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, मैंने कहा चेकअप कराऊं, ये सब गम ख़त्म, वल्लाही ख़त्म। आपको ये फिक्रें लग जाएंगी कि ये सब कुछ है, कि आज दुनिया वाले हैरान हैं कि एक शख्स की बात को सेव करने के लिए लाखों के एतबार से सहाबा की जिंदगियों को खंगाल के रख दिया। किसने बात कही तो किस दौर में कही, जवानी में कही तो बुढ़ापे में कही, हाँ जवानी में इनका अफजा ठीक था, बुढ़ापे में ठीक नहीं था। अच्छा ये बात फिर ऐसी होगी, ये शुरू की ये बात की जब इसमें जाए, तो हदीसों पे इतना माशाल्लाह मवाद मौजूद है, तौरात और इंजील पे जबर जेर कुछ पता ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आज की ज़ईफ़ हदीसें भी तौरात और इंजील से ज़्यादा सॉलिड है। अल्लाह ने हमें इतने प्यारे नबी की उम्मत बनाया, तो आज लोग हदीस पे तो अमल नहीं करते, किसने कही छोड़ो छोड़ दो ये है, वो आज के दौर का फैशन है, हम नहीं मानते हदीस को। जैसे अब कुछ गोरे कहने लगे ना, वी डोंट बिलीव इन गॉड, तो अब आज कुछ मुसलमान भी अदा से कहते हैं वी डोंट बिलीव इन प्रॉफिट। और आज के दौर का बहुत बड़ा नासूर और बहुत बड़ा फितना है कि जिसको इस तरह से आप लें और इस तरह की चीज़ों पे लेके आए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि तौरात और इंजील जो हैं वो उतारी गई थी। एक आखिरी चीज़ इस पे नोट करके आगे चलते हैं, और वो क्या है, देखिएगा, अनजलत तौरात वल इंजील मिन कबलु हुदल लिन्नास वनजल अल फुरकान। अब यहाँ लफ्ज़ देखिए कि अनजला का लफ्ज़ भी आ गया है मुसद्दिकल्लिमा, और ऊपर नजला का आया है, फ़र्क क्या होता है दोनों का। नजला का लफ्ज़ होता है थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना, नजला युनज़िलु तंजील। बारिश से मिसाल ले लें, हल्की हल्की फुहार पड़ती है कभी कभी, और कभी होती है एकदम सरलाटेदार बारिश होती है और 5 मिनट में बह के सब चीज़ें साफ। नज़ला थोड़ा थोड़ा बहना, और अनज़ला में यकमुश्त बहना। कुरान पाक की तंजील में दोनों तरीके थे, कुरान पाक आसमान दुनिया पे आ गया एट वंस, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ठीक है, वहाँ अनज़ला का लफ्ज़ है, पूरे का पूरा लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पे भेज दिया। आसमाने दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक तक तकरीबन 23 साल में पहुंचा। बात वाज़े, तो नज़ूले कुरान के 2 मरहले हैं, एक अनज़ला का और एक तंजील का। दोनों को अल्लाह ताला ने यहाँ पेश करके कह दिया कि ये चीज़ें अपने वक्त से पहले खुदन थी। अब यहाँ देखिए, वनज़ल अल फुरकान, फुरकान का लफ्ज़ क्या है, फ़र्क पैदा करने वाली। पहले तो लिखिए, ये कुरान का एक लाड का नाम है, एक होता है हमारा असली नाम और एक होता है पेट नेम। कुरान पाक के 30 से भी ज़्यादा नाम है, शायद इससे भी ज़्यादा, असल नाम कुरान, ठीक है, लेकिन इसके प्यारे नामों में एक नाम अल फुरकान है। कुरान को फुरकान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हक और बातिल में फ़र्क कर देता है। यही लफ्ज़ सूरत अनफाल में यौमुल फुरकान के नाम से गज़वे बदर को कहा गया, क्योंकि गज़वे बदर की फतह ने हक को हक और बातिल को बातिल कर दिया था। लोगों को खूब अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और इसके अंदर जो लगे हुए वही कामयाब होंगे। तो गोया के अल्लाह ताला ने इन सारी बातों में हम सबको बता दिया कि पिछले मजाहब के लोगों के सोर्सेज भी वीक हैं, उनका दीन आगे फैल ही नहीं सका। आज मुसलमानों को भी एक ऐसी सोच ने यकीन करें पीछे रख दिया कि उन्होंने अपनी किताब को आम नहीं किया, चंद लोगों के हाथों में किताबें दी और हम जैसे आम लोग महरूम रह गए इस कुरान से। जिस तरह आज हम आप पढ़ रहे हैं अपने अमल की नीयत से इस किताब को, अगर मुसलमानों का बच्चा बच्चा 10-12 साल का होने तक इसको पढ़ चुका होता तो यकीन करें ना आपके मुल्कों में जेलों की जरूरत थी, ना थानों की जरूरत थी और ना इस तरह की गलत चीज़ों की। अब यहाँ ये बात करने के बाद ये अल्लाह ताला की इलाह होने की दलाइल दे दिए गए कि देखो तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं।